أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار مثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں دو قسم کے مالی نظاموں کا مقابلہ کیا گیا ہے ایک وہ جو اسلامی مالی نظام ہے اور ایک وہ جو سودی مالی نظام کہلاتا ہے اور آج دنیا کی اکثریت پر جس مالی نظام کا قبضہ ہے سودی مالی نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ روپے میں گویا براہ راست بذات خود نشو و نما کی اور بڑھنے کی طاقت پائی جاتی ہے اس لیے روپیہ دینے والا یہ توقع رکھتا ہے کہ لازماً اس روپے پر اسے سالانہ کچھ رقم ملنی شروع ہو جائے اور دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا روپیہ بڑھ رہا ہے اور لینے والا اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اسے اس روپے کے استعمال کے نتیجے میں کیا فائدہ پہنچا ہے۔ اگر وہ فائدہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ 100% یا اس سے بھی بڑھ جائے، تب بھی وہ ایک معین رقم سے زیادہ روپیہ دینے والے کو دینے کا پابند نہیں ہوتا، اور اگر اس کو نقصان پہنچ جائے تو خواہ وہ اصل سرمایہ میں سے واپس کرنے پر مجبور ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چونکہ نقصان پہنچا ہے اس لیے میں اب تمہاری رقم پر کچھ زائد دینے کا پابند نہیں، وہ لازماً پابند رہتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ سودی نظام کا، اور دنیا کی بھاری اکثریت اس وقت اسی نظام کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا مالی نظام ایک حیرت انگیز بالکل مقابل کا تصور پیش کرتا ہے، اور وہ ایسا حیرت انگیز ہے کہ آج کا مالی مفکر اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسلام کا مالی نظام یہ کہتا ہے کہ روپے میں بذات خود بڑھنے کی طاقت موجود نہیں، بلکہ انسانی صلاحیتوں کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو صلاحیتوں کے ساتھ ضرب کھانے کے بعد اس کا نتیجہ منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی احمق یا بدنیانت آدمی کے ہاتھ میں تمہارا روپیہ جاتا ہے تو وہ روپیہ کم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی سمجھدار اور دیانتدار آدمی کے ہاتھ میں تمہارا روپیہ جاتا ہے تو وہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے روپیہ محض ایک ذریعہ ہے انسانی صلاحیتوں کے استعمال کا، کے اظہار کا، اور صلاحیتوں کے ساتھ مل کر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سود دینے والوں، سود لینے والوں کو، سود خوروں کو، کہ کیا تمہارے روپے بچے دیتے ہیں؟ مراد اسی فلسفے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ روپیہ محض ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں انسانی صلاحیتیں، یا تو اگر وہ چمکدار ہیں اور ہوشدار ہیں یا تو اس روپے کو بڑھا دیں گی، اور اگر وہ صلاحیتیں خابیدہ ہیں یا ان میں اور نقائص پائے جاتے ہیں تو اس روپے کو کم بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہی ہے جو امر واقعہ کے طور پر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض بڑے بڑے امیر تاجروں کے بچے بہت سی دولتوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس حال میں جان دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی ساری کمائی کو وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت ہی غریب گھروں میں آنکھیں کھولنے والے، جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوتی، کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، وہ اپنی صلاحیتوں سے پہلے تھوڑا سا سرمایہ پیدا کرتے ہیں اور پھر اس سرمایہ کو بڑھا کر بہت بڑے بڑے خزائن اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فطرت کا واقعی اظہار ہے، اسلام صرف اسی کو قبول کرتا ہے، اور کسی فرضی مالی نظام کے تصور کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھا کر یہ کہتا ہے کہ اپنے روپے کو نہ صرف قرضہ حسنہ کے طور پر دو، بلکہ اس طرح دو کہ تمہیں اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں ملے گا بظاہر، اور خدا کی راہ میں کثرت سے خرچ کرو، اور اگر تم خدا کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ایک بالکل مختلف سلوک کیا جائے گا، تمہارا مال بڑھنے کی بجائے کم ہوگا، اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ یعنی بذات خود مال میں بڑھنے کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تم حکیمانہ استعمال نہیں کرو گے یا اپنے اموال کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرو گے تو یہ تمہارا روپیہ اسلامی قانون کے تابع کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلامی نظام کا مد مقابل کا تصور۔ اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ بظاہر اسلام مسلمانوں کے روپے کو اپنی تعلیم کے ذریعے اجاڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کا مالی نظام تو اتنا مختلف ہے کہ اس کے مفکرین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ عجیب مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو روپیہ بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی ترکیبیں پیش کر رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ جب تم روپیہ دو تو تم زیادہ سے زیادہ شراکت کر سکتے ہو، और जिसके पास भी रुपया रखवाते हो तजारती अगराज के जरिए लिए, अगर उसको नुकसान हुआ तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से उसे कबूल करना पड़ेगा, अगर उसे फ़ायदा हुआ तो बराबर के फ़ायदे में शरीक होना पड़ेगा, लेकिन लाजमन तुम्हारा रुपया नहीं बढ़ेगा। उसके खतरात उसी तरह हैं जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के रुपये के हर जगह खतरात दरपेश होते हैं। फिर फरमाता है कि अगर तुम कर्ज़ा हसना दे सको, यानी एक आना भी वापस ना लो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर फरमाता है कि एक और कर्ज करो, कर्ज का इंतजाम सलूक करो, तुम बजाय इसके कि इंसानों को कर्जा दो तुम हमें कर्जा दो, और वो कर्जा ऐसा होगा कि इस दुनिया में बज़ाहिर तुम्हें उसमें से एक आना भी लुटाया नहीं जाएगा। तुम ये फैसला करके कर्ज दोगे कि ये रुपया हम खुदा के नाम पर खुदा के बंदों को दे रहे हैं, या खुदा के नाम पर खुदा की जमात को दे रहे हैं, और तुम्हारे हाथ से फिर ये निकल गया। जहां तक इस दुनिया का ताल्लुक है, तुम्हारी नीयत में ये बात शामिल होगी कि मैंने अब कभी इस रुपए को दोबारा वापस नहीं लेना, ये एक और शोशा है इस माली निजाम का। और फिर फरमाता है कि तुम जहां तक मुमकिन हो सब कुछ खुदा के हाथ पर बेच डालो, यानी मामूली कर्जा हसना नहीं, बल्कि अगर मुमकिन हो सके तो अपने सारे अम्वाल और सारी जिंदगी अल्लाह के पास बेच डालो। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये माली निजाम दुनिया में पनप सकता है? किस तरह वो लोग जिंदा रहेंगे जिनको अम्वाल के बदले में, अम्वाल की कुर्बानी के नतीजे में मादी नुक्ते निगाह से कुछ भी हाथ नहीं आ रहा? इस हिस्से पर गौर करने से कबल कुरान करीम का यह ऐलान मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह इस मजमून पर गुफ्तगू फरमाई और फरमाया कि जो लोग सूद का रुपया खाते हैं और सूदी माली निजाम में परवरिश पा रहे हैं, उनको यह वहम है कि उनका रुपया बढ़ रहा है। ला यरबु इंदल्लाह है, जहां तक अल्लाह ताला का ताल्लुक है, और यहां मुराद निजाम खुदाबंदी है, अल्लाह ताला का जो निजाम है, इक्तसादी निजाम जो खुदा ने पैदा किया हुआ है, उस इक्तसादी निजाम की रूह से जो लाजमन गालिब आएगा और जो खुदा का निजाम है, ये रुपया बढ़ता नहीं कम होता है। और जिस रुपए को तुम समझते हो कि कम हो रहा है, यानी जकात में देते हो और गरीबों की खिदमत में देते हो और अल्लाह ताला के दीन के सपुर्द कर देते हो, फरमाता है वो अल्लाह के नजदीक बढ़ रहा है। तो मालूम यह होता है कि एक किसी ऐसी बाशऊर और गहरी नजर रखने वाली हस्ती का निजाम है जो जानता है कि बज़ाहिर ये एतराज पैदा होंगे, लोग ये समझेंगे और दुनिया के बेवकूफ ये दावा करेंगे कि ये माली निजाम तो दुनिया में पनप नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है यही पनपेगा और तुम्हारा नहीं पनपेगा। और फिर फरमाता है कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो फाजनु बेहरबी में अल्लाह है व रसूल ही, फिर तुम खुदा और खुदा के निजाम से और उसके रसूल के निजाम से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम्हारे मुकद्दर में जंग लिखी जाएगी और तुम उस जंग से बच नहीं सकते। हैरत अंगेज दावा है मद्दे मुकाबिल पर इस्लाम का, जो दुनिया के इक्तिसादी दावी को बिल्कुल रद्द करके फेंक देता है और एक ऐसा दावा पेश करता है जिसकी बज़ाहिर समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का निज़ाम चलाना चाहता है इस्लाम। इस सिलसिले में मैं चंद अमूर की तरफ फिलहाल अहबाब जमात की तवज्जो मबजूल करवानी चाहता हूँ। ये मज़मून इतना वसी और अहम है इस दौर में कि आज इस्लाम को जिन खतरात का सामना है और जो बड़े बड़े चैलेंज दरपेश हैं, उनमें सबसे अहम और बुनियादी चैलेंज इक्तिसादी चैलेंज है। सबसे बड़े खतरात जो इस्लाम को दरपेश हैं, बल्कि सारी दुनिया को दरपेश हैं, वो सही माली निज़ाम के जारी ना होने के खतरात हैं। और कुरान करीम से पता चलता है कि अगर माली निज़ाम को सेहत के साथ, उस माली निज़ाम को सेहत के साथ जारी ना किया गया जो खुदा ताला ने कायम फरमाया है, तो खुदा और उसके रसूल से जंग के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। यहां रसूल तो बज़ाहिर दुनिया से रुख्सत हो चुका है, तो खुदा और रसूल से क्या मुराद है? मुराद है निजाम खुदाबंदी, और वो निजाम जो उस वह नबी के नतीजे में हमारे सामने आया। उस निजाम से जब टक्कर लोगे तो तुम्हें एक जंग का सामना करना होगा। ये मुराद नहीं है कि मुसलमानों के साथ इस गैर सूदी निजाम वाले नजरियात के हामिल लोगों की लड़ाई होगी। मुराद ये है कि ये कानून है जिससे टकराने के नतीजे में तुम लाजमन जंगों में मुब्तला किए जाओगे, और हलाकतें तुम्हारा अंजाम होंगी, और वो हलाकतें जंगों के जरिए दरपेश आएंगे। ये है असल ऐलान जो इस आयत में किया गया है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं मुख्तसरन सिर्फ चंद इशारे इस मौके पर इस बात के करना चाहता हूं कि सूदी निजाम के मुकाबले पर इस्लामी निजाम के निकात हैं क्या, और जमात अहमदिया को जब तक उसकी समझ ना आए उस वक्त तक वो किस तरह उनसे इस्तेफादा कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि मुख्तसरन, सारे मजमून को तो बयान यहां नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्तसरन चंद निकात आपके सामने रखे जाएं कि इस्लाम किस किस्म की तिजारतों को फ़रोग देता है और किस किस्म के रुपए के इस्तेमाल की इजाज़त देता है और तहरीस करता है, और इसके साथ ही ये ऐलान करता है और ये हतमी वादा करता है कि इस तरीक पर चलने के नतीजे में तुम्हारे रुपए में बरकत पड़ेगी, वो ज़ाया नहीं होगा। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो बार बार जमात के सामने आता रहता है कि खुदा की राह में अगर तुम कुर्बानी करोगे, अल्लाह की राह में कुछ पेश करोगे, तो अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करेगा। कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह ताला की खातिर जो पेश करते हैं वो इस नीयत से तो पेश नहीं करते कि उन्हें वापस मिले, लेकिन जिसके हुजूर पेश करते हैं ये उसका अपना मामला है कि वो लाजमन वापस करता है, और इतना बढ़ा के वापस करता है कि हो सकता है इसी दुनिया में उनका रुपया इस तरह बढ़ जाए जिस तरह एक दाना जो ज़मीन में डाला जाता है वो एक ऐसी अच्छी ज़मीन में पड़ा हो जिसमें बहुत ही नशोनुमा की ताकत हो। उस दाने से 7 बालियां फूटें और हर बाली में 7 सिट्टे हों, 7 शाखें फूटें, हर शाखी में 7 बालें हों और हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 गुना तक भी खुदा बढ़ा सकता है इसी दुनिया में। सिर्फ बात की दुनिया का सवाल नहीं, बात की दुनिया में तो अनगिनत है, निस्बत ही कोई नहीं रहती। और फिर फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, तुम ये ना समझो कि तुम्हारा रुपया सिर्फ 700 गुना तक बढ़ने की ताकत रखता है। जिस जमीन में तुमने ये बीज डाला है उसकी नश्वोनुमा की ताकतें लामुतना ही हैं। तुम्हें समझाने की खातिर हम बता रहे हैं कि जिस तरह दुनिया में तुम रोज़मर्रा ये देखते हो कि एक बीज गंदम का फेंकते हो और बज़ाहिर उसे फेंक कर अपने घर खाली हाथ वापस आ जाते हो, लेकिन कानून कुदरत उसकी हिफाजत फरमाता है, कानून कुदरत उसमें नश्वोनुमा करता है, उसमें बरकत डालता है, और देखते देखते उसमें से शाखें फूटती हैं, लहलाते हुए खेत बनते हैं, और यहाँ तक भी तुम देख सकते हो कि एक दाना 700 गुना ज़्यादा फल दे जाए। जिस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हो रही थी उस वक्त तो ऐसा कोई नज़ारा कभी दुनिया ने नहीं देखा था, क्योंकि एक दाने का 700 दानों में तब्दील होना ये एक ऐसा वाक़या है जो आज तक भी अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। इंसान एग्रीकल्चर में बेशुमार तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी ये नहीं हो सका कि गंदम का एक मन खेत में डाला जाए और 700 मन गंदम उस खेत से निकलाए। लेकिन ये ज़रूर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कानून कुदरत के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं नश्वनुमा की, उन पर इंसान पहले से ज़्यादा इल्म पा रहा है। दिन ब दिन उसके बीज में बढ़ने की ज़्यादा ताकतें हमारे सामने आ रही हैं और उनसे इस्तेफादे की कुदरत इंसान को मिलती चली जा रही है। चुनाचे हमारे मुल्क में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक मन कि चंद सेर मकई का बीज डालकर 120 मन औसत ली जाए फी एकड़, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस बात का। लेकिन अमेरिका में ऐसे इलाके मैंने देखे हैं जहां लखूखा एकड़ पर मकई की काश्त की गई है और औसतन उन लखूखा एकड़ की पैदावार 120 मन फी एकड़ के हिसाब से बनती। यहां तो एक खेत में भी अगर हम जोर लगाएं तभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। और मकई का बीज निस्बतन कम डाला जाता है, तो वो उन इलाकों में जहां मकई का दाना काश्त किया जा रहा है वहां निस्बत 1 और 700 के करीब करीब पहुंच रही है। गंदम में भी नई जायदाद हो रही हैं और हरगिज बईद नहीं कि बिलाखिर इंसान का के हर किस्म के बीज का हर दाना अल्लाह ताला की फजल और उसकी कुदरतों के नतीजे में 700 गुना फल देना शुरू कर दे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इसका तसव्वुर ही कोई मौजूद नहीं था, इसके करीब तरीन भी इंसान नहीं फटका था। उस वक्त ये कुरान करीम दावा फरमा रहा है, वह एक पेशगोई है कि मुस्तकबिल में इंसान इसकी दस्तरस रखेगा, इस बात पर दस्तरस रखेगा, और जब उसे कुदरत दी जाएगी तब उसकी तवज्जो हम मकबूल कराते हैं इस बात की तरफ कि वो खुदा जो दुनिया में तुमसे ये मामला कर रहा है क्यों यकीन नहीं करते कि जब तुम उसकी खातिर उसके सुपुर्द अपना रुपया करोगे तो वो इतना और इस बल्कि इससे ज्यादा बढ़ाने की ताकत रखता है। यह है मजमून जो खुदा ताला बयान फरमा रहा है, और इसमें जाहिरी दुनिया के जो इक्तिसादी निज़ाम के कवानीन हैं उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा। हाँ, कानून कुदरत की तरफ तवज्जो दिलाकर अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि अल्लाह ताला खुदा ताला बेहद फजलों वाला बेहद करम वाला है। आए दिन इंसान का उस जात से मामला होता है, काफिर क्या और मोमिन क्या, वो पनप ही खुदा के फजलों पर रहा है। अगर खुदा ताला के अंदर कवानीन में ये ताकत ना हो कि एक चीज बढ़कर सैकड़ों गुना में तब्दील हो जाए तो इंसानी जिंदगी बल्कि हैवानी जिंदगी इस दुनिया से नापैद हो जाए। ये कानून कुदरत है जिसमें हर दफा अल्लाह का फजल खामोशी से काम करता हुआ नजर आ रहा होता है और हम देखते ही नहीं और महसूस ही नहीं करते। हर दफा जब जमींदार झोली में दाने भरकर खेत पे फेर रहा होता है दाने फेंकता हुआ तो सोचता नहीं अक्सर कि मैं क्या हरकत कर रहा हूं, मिट्टी में दाने रोल रहा हूं अपने हाथों से, इसलिए कि गैर शऊरी तौर पर उसको खुदा की रहमत पर कामिल यकीन होता है, जानता है कि वो रहीम है, बार बार रहमत और फजलों को लेके आने वाला है, और जो उसके कानून के सुपुर्द में कर दूंगा वो कम होकर वापस नहीं आएगा, लाजमन ज्यादा होकर वापस आएगा, और इंसानी जिंदगी का बका साबित कर रहा है कि खुदा ताला वाकई बे इंतहा फजलों वाला है और उसके कानून कभी भी इंसानी कोशिशों को कम नहीं करता, उनको बढ़ाकर वापस किया करता है। तो यकीन दिलाने की खातिर, एतमाद पैदा करने की खातिर अल्लाह ताला ने अपने वजूद को पेश फरमाया कि देखो देखो मैं वही तो हूं जो मोमिन और काफिर से इतने फजलों का मामला करता। फिर कितने जाहिल होंगे वो लोग जो मोमिन होकर मुझ पर बदज़नी करने लगे कि वो खुदा जिसका फजल सारी दुनिया पर आम है वो अपने खास बंदों से ऐसा जालिमाना सलूक करेगा कि वो मेरी खातिर कुर्बानी दें और उसके बावजूद वो कुर्बानी घर में रख ले और उनको गरीब करता चला जाए। फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा तुमसे मामला किया जाएगा। युजाइफुल मई शाह में अल्लाह के मोमिन बंदे मुराद हैं, जो खुदा के हैं उनसे ये दुनिया का कानून उन पर जारी नहीं होगा, उससे बढ़कर उनसे मामला होगा और कोई निस्बत नहीं रहेगी उनकी उन कुर्बानियों को उन खुदा के फजलों के साथ जो कुर्बानियों के बाद आने वाले हैं। तो वो सारा माली निजाम जो खुदा के नाम पर खास जमात को दिया जाता है या गुरबा पर खर्च किया जाता है वो इस आयत के ताबे आ जाता है। दूसरा पहलू है आम दुनिया का जो माली निजाम है उसमें इस्लाम क्या तसव्वुर पेश करता है। इससे मुतल्लिक मैंने जैसा कि बयान किया था, इस्लाम कहता है कि तुम्हारे रुपए में बराह रास्त बढ़ने की ताकत नहीं, और ये अमरे वाक्य है, और तुम रुपया देकर खुद उसकी जिम्मेदारी से आजाद होने के बाद ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो रुपया बढ़ेगा। इसके नतीजे में क्या चीज सामने आएगी वो मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं। इसके नतीजे में दो ही बातें सामने आ सकती हैं, या तो हर इंसान अपने सरमाए को कुछ ना कुछ अपनी समझ और फहम के मुताबिक इस्तेमाल करने की सोचना शुरू कर दे, जो भी पसंदाज उसने किया है वो सोचे कि मैं इसको किस तरह बेहतर इस्तेमाल करूं वरना अगर मैं नहीं करूंगा तो 2.5% इसने कम हो जाना। तो ये जो मनफी कुव्वत काम कर रही है ये मजबूर करेगी उस शख्स को कि वो लाजमन अपने रुपए को किसी ऐसे मसरफ में लेके आए कि वो कम ना हो। और चूंकि दुनिया में अक्सर लोग ये सलाहियत नहीं रखते, इसलिए मजबूर होगा ऐसा शख्स बासलाहियत इंसान को तलाश करने पर। और चूंकि कोई कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा इस बात से कि रुपया दिया हुआ लाजमन बढ़ जाए, इसलिए दूसरी शर्त यह होगी कि वो लाजमन दयानतदार आदमी को तलाश करेगा। क्योंकि अगर बददयानत के पास रुपया चला जाए और वो हिसाब किताब में ही ऐसा मामला उसके रुपए को फना करके रख दे तो फिर तो कोई उस बेचारे का चारा नहीं हो सकता, उसकी पेश नहीं जा सकती। क्योंकि होशियार इंसान जो बददयानत भी हो वो तजारती हिसाबात के हेर फेर में सारे रुपए को ज़ाया किया हुआ दिखा सकता है। तो इस्लामी निज़ाम पनप ही नहीं सकता जब तक दयानतदारी साथ ना पनप रही, और दयानतदारी अगर साथ पनपे तो दयानतदारी की कीमत इंसानी निज़ाम में पड़ती है जो दूसरे निज़ाम में नहीं पड़ती। अब यहाँ शर्त यह होगी कि दयानतदार आदमी जिसकी साख दुनिया में हो उसको तलाश करो और उसके पास अपना रुपया लगाओ, और ऐसे दयानतदार के पास रुपया लगाओ जिसके अंदर सलाहियतें भी मौजूद हैं, या फिर इश्तराक मिलाक मिलके करो। अगर तुम्हारा सरमाया थोड़ा है तो सारे मिलकर एक इश्तराकी सरमाए की कंपनी बना लो और उसके नतीजे में मिलजुल कर फैसला करके अपने में से जो काबिल आदमी है उसके सुपुर्द मामलात करो, लेकिन शर्त यह है कि वो दयानतदार भी। इस किस्म का माली निज़ाम वाकयतन इससे पहले तारीख में पनप चुका है, और अक्सर लोग ये नहीं जानते कि हज़रत इमाम अबू हनीफा जैसे फुकहा और जैसे बड़े मुदब्बिर लोग अपने वक्त के बेहतरीन ताजरों में भी शुमार होते थे। सिर्फ इमाम अबू हनीफा नहीं, और बहुत से मुसलमान बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिनको कुरानी माली निज़ाम ने इस तरह फ़ायदा पहुँचाया कि उनकी दयानत की कीमत डाल दी और उनकी ज़हनी सलाहियतों की कीमत डाल दी। नतीजतन बकसरत लोग उनके पास अपना रुपया लेकर आया करते थे और उनके सुपुर्द करके चले जाते थे कि हमें तुम पर कामिल एतमाद है, अगर नुकसान हुआ तो तुम नुकसान दिखाओगे और अगर नफ़ा हुआ तो नफ़ा दिखाओगे, हम इसमें शरीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए इस्तेमाल के मौाक़े नहीं मिलते थे तो रद्द कर दिया करते थे। ऐसे वाक़यात आते हैं कि लोग अपनी पोटलियाँ नाम लिख कर फेंक कर चले जाया करते थे और उनको कामिल यकीन होता था कि यह रुपया बढ़ेगा, लेकिन ये यकीन सिर्फ दयानतदार सोसाइटी में पनप सकता है और दयानतदार सोसाइटी के बगैर इस्लामी निज़ाम चल ही नहीं सकता। ये एक और पहलू हमारे सामने आया। इसलिए सारी दुनिया की ताकतें अगर मिलकर ये कोशिश करें कि गैर इस्लामी मुआशरे में इस्लामी निज़ाम चला के दिखा दें तो वो ज़रूर नाकाम होंगे, क्योंकि इस्लाम इस निज़ाम को चलाने से पहले वो मिट्टी पैदा करता है जो ज़रख़ेज़ है और जो एक दाने को 700 गुना बढ़ा सकती है। मिट्टी तो हो थूर वाली और कलर वाली और बददयानतियों के कीड़ों की मारी हुई, और दाने फेंक दे के घर वापस आ जाएं तो दाने जल जाएंगे आपके, कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो एक और अजीम शान इस्लामी निज़ाम का हिस्सा ये है कि इस्लामी निज़ाम दयानतदारी को पहले पैदा करता है और फिर माली निज़ाम को जारी करता है। और इस बात की जमानत क्या है कि दयानतदारी मौजूद है? इस बात की जमानत यह है कि रुपए की मोहब्बत पहले कम कर देता है। पहले फरमाता है कि खुदा की राह में खर्च करो और जहां तक हो सकता है कर्जे दो। वो जमात जो अपने रुपए को इस तरह फेंकने की आदि पड़े हो जाए कि आंखों में आंखें डाल कर गोया वो रुपए की हलाकत को कबूल कर रही है, गरीब हो अमीर हो जो कुछ उसका पसमानदा है, खुदा ताला फरमाया कि मुझे दे दो कर्जा, मैं तुम्हें वापस करूंगा, और हो सकता है ये रुपया तुम्हारा मरने के बाद वापस हो। और ऐसा सौदा अजीब व गरीब भी कोई दुनिया की होशमंद कौम कर सकती? लेकिन वो मोमिन बंदे जो खुदा को देख चुके होते हैं, उस पर गवाह हो चुके होते हैं, उसके मामलात रोजमर्रा उनके साथ हो रहे होते हैं, वो जानते हैं कि ये दुरुस्त है। चुनाचे उनको आदत पड़ जाती है कि अपने रुपए को
بغیر منافع کے, بغیر اس کی واپسی کے, بظاہر توقع کے وہ خدا کے سپرد کرتے چلے جاتے ہیں اور شکریہ تک قبول نہیں کرتے. جب وہ غریب لوگ جن کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکر, کہ ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر, خدا کی رضا کی خاطر ایسا کر رہے ہیں, کیوں بدمزہ کر رہے ہو ہماری نیکیوں. تم ہمیں ان لذتوں میں کوئی رہنے دو جو ہمیں اپنے رب کی رضا کے نتیجے میں حاصل ہوتی, اس لیے شکریہ تک ہمارا ادا کرو. اس مزاج کے جو خدا کے بندے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے متعلق یہ وہم کرنا ہی بہت بڑی دنیا کی حماقت ہوگی کہ وہ لین دین کے معاملے میں مدھیانتی کریں. جو احسان کے مقام پر ہو وہ لازماً انصاف قائم کرتا ہے. اس لیے وہ جو پہلا مالی نظام ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا نظام, وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ لوگ خدا کی خاطر انصاف اور تقویٰ پر قائم ہوں گے, اور مال کی محبت اس حد تک کم ہو چکی ہوگی کہ خدا کی رضا کو چھوڑ کر مال نہیں کمائیں گے. کیونکہ خدا کی رضا کی خاطر مال چھوڑ بیٹھے تھے جبکہ کوئی جبر نہیں تھا. تو جو قوم خدا کے مال, خدا کی رضا کی خاطر مال چھوڑ رہی ہو, یہ حسابی غلطی ہے کہ اس سے یہ توقع رکھنا کہ خدا کی رضا چھوڑ کر مال کھینچے گی. اس لیے واقعتاً اگر کسی قوم میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر مال چھوڑ سکتی ہے, اور دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر, دنیا کے فوائد کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر, اس قوم کی دیانتداری کی قرآن کریم ضمانت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہاں یہ نظام پنپے گا جس کو اسلامی مالی نظام کہتے ہیں. وہاں جتنا زیادہ سمجھدار اور جتنا زیادہ ذہین اور جتنا زیادہ دیانتدار انسان ابھر کر دنیا کے سامنے آتا چلا جائے گا, اتنا ہی زیادہ روپیہ اس کی طرف پھینکا جائے گا, اور روپے کے ارتکاز کا ذریعہ یہ دیانتداری بنے گی, اور پھر اس کی تجارت میں, اس کی صلاحیتوں میں باقی قوم بھی شریک ہو جائے گی. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کنجوسی اور نفسانیت اور خود غرضیوں سے بچایا گیا ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ سودی مالی نظام میں کلیتاً انحصار خود غرضی پر ہے. دینے والا بھی خود غرضی کے ساتھ دیتا ہے, ورنہ ہرگز ایک آنا بھی اپنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لینے والا ایک اور چلاکی میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بیوقوف کو پتہ نہیں کہ جس جگہ یا جس ملک اور جس دور میں 13% سود چل رہا ہے وہاں تجارت میں 50% تک بھی فائدہ ہو جاتا ہے, 20-25 تو عام بات ہے. اس لیے بظاہر یہ فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن تجارت میں جب میں لگاؤں گا روپیہ تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا, اس لیے میری صلاحیتوں میں یہ شریک نہیں ہے, اس کی کمائی میں میں شریک ہو رہا ہوں. تو دونوں جگہ خود غرضی کی مار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ مالی نظام پھر ایسے بدیانت لوگوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے کہ جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت میں بڑھ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ جس نسبت سے سودی سرمایہ بڑھتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انفلیشن ہو کر روپے کی قیمت کم ہو رہی ہوتی. اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال کہ آپ کے روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. آج سے پہلے پچھلے سال جو روپے کی قیمت تھی آج اس سے 15-20% کم ہو چکی ہے, اور اگر آپ نے بینک میں روپیہ رکھوایا ہوا ہو تو وہ 11% بڑھ جائے گی زیادہ سے زیادہ. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے وقوفو, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا روپیہ بڑھ رہا ہے, اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ گھٹ رہا ہے. سودی روپے میں اور سودی نظام کے اندر رہتے ہوئے سودی روپے میں برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے خطرناک ہوشیار کائیاں لوگوں کے ہاتھ میں یہ مالی نظام چلا جاتا ہے جو کلیتاً دیانت سے آ رہی ہوتی, اور اتنے کیئرلیس ہو چکے تھے, اتنے بے رحم ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس مالی نظام کے شکنجے میں قوموں کے بعد قوموں کو جکڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کو غریب سے غریب تر بناتے چلے جاتے ہیں, اور ان کے دل میں کوئی رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ دینے والا بھی مار کھا رہا ہوتا ہے, اور فرماتا ہے کہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ لینے والے کو بھی خدا کے نظام کی طرف سے سزا ملتی ہے. اور دونوں جگہ اس نظام کے نتیجے میں لازمن بددیانتیاں بڑھتی ہیں اور صفاقی بڑھتی ہیں اور خود غرضی بڑھتی ہے. تو اسلامی نظام اس کے برعکس انسانی ذہن کو نشو و نما اور جلا دینے پر مجبور کرتا ہے, ورنہ جرمانہ لگاتا ہے. لالچ کے نتیجے میں اقتصادی نظام نہیں چلتا بلکہ جرمانے کے خوف سے چلتا ہے. اگر یہ مالی نظام جماعت احمدیہ نے دنیا میں جاری نہ کیا تو یہ دنیا لازمن جنگوں کا شکار ہوگی, کیونکہ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تیار ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے نظام سے اور اس کی قدرت سے جنگ کرنے کے لیے. مراد یہ ہے کہ جب خدا اور رسول کے نظام سے ٹکراؤ گے تو نتیجہ جنگ نکلے گا. اور اس وقت جو جنگ ہمارے سامنے ہے, یہ اگر اس کی ایک وجہ بیان کی جائے تو مالی دنیا کا سودی مالی نظام اس کی وجہ بنتی ہے. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, بددیانتیاں ایک دوسرے سے ضرب کھاتی چلی جا رہی ہیں اس جنگ کو قریب کرنے میں, لیکن سب سے بڑی ایک وجہ اگر بیان کی جائے تو دنیا کا سودی مالی نظام ہے جو جنگ کے قریب تر کیے چلا جا رہا ہے. اور اقتصادی ماہرین دن بدن اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے, اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے, ورنہ میں بیان کر سکتا ہوں کہ کیوں بالآخر لازماً اس نظام کے اندر وہ وجوہات موجود ہیں جس کے نتیجے میں اسے خود ہی شکست کھا جائے. جب یہ ان حدود تک پہنچتا ہے جہاں اس کو شیک ہو جانا ہے, جہاں اس کے ٹکڑے اڑنے ہیں, تو وہاں جنگیں آتی ہیں. وہ قومیں جو لمبے عرصے تک دنیا کی لوٹ مار کر رہی ہوتی ہیں, جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اب ہمیں مزید اس بات کی سکت نہیں رہی, ہمارا نظام مالی نظام کلیپس ہونے والا ہے اور ہم غربت اس مالی نظام کے باوجود ہمارے سامنے کھڑی ہے, وہ وقت ہوتا ہے جب کہ دنیا جنگوں میں مبتلا کی جاتی ہے. پھر بڑی سخت ٹکریں لگتی ہیں آپس میں, لوٹ گھسوٹ جس ذریعے جس طاقت سے بھی ہو سکے وہ کی جاتی ہے. تو اس وقت ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور جماعت احمدیہ اس معاملے میں ابھی پیچھے ہے. یہ درست ہے کہ مالی نظام یعنی عالمی مالی نظام سے جماعت احمدیہ ٹکر لینے کی حیثیت میں نہیں ہے اس وقت, یعنی سمندر کی لہروں میں اگر ایک قطرہ انتہائی طاقت کے ساتھ بھی ٹکرا پھینکا جائے تب بھی وہ لہروں کے رخ کو تو نہیں بدل سکتا بیچارہ. اس لیے یہ تو میں نہیں کہتا کہ جماعت احمدیہ میں اس وقت یہ طاقت ہے کہ دنیا کے اقتصادی نظام کا رخ بدل دے, لیکن یہ طاقت ضرور ہے کہ اپنے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہے وہ اسلامی مالی نظام کو جاری کرنے کی کوشش کرے. اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سودی روپے سے نفرت کرنے لگیں اور بہانے بنا کر اپنی تجارتوں میں سودی روپے کو داخل نہ کریں, جہاں تک معاشرے کی مجبوریوں کا تعلق ہے, میں جانتا ہوں کہ احمدی کلیتاً سودی روپے پر سود دینے سے بچ نہیں سکتا, کیونکہ مالی نظام اس قسم کا بن چکا ہے کہ ایک احمدی تاجر کو لازماً ایسے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے, ورنہ وہ تجارت میں زندہ نہیں رہ سکتا. قومی طور پر تجارتی لحاظ سے اس مالی نظام میں رہتے ہوئے موت قبول کرنی پڑے گی اگر کلیتاً الگ ہو جائیں. اس کا حل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیش فرمایا کہ جب تک ہم دنیا کے مالی نظام کو تبدیل نہیں کرتے, ایک بات ہم بہرحال کر سکتے ہیں کہ جہاں بالکل مجبور ہو جائیں وہاں روپیہ دے تو دیں لیکن سودی روپے سے استفادہ نہ کریں, یعنی ہرس کا پہلو ہمارے اندر پیدا نہ ہو. مجبوراً اگر اپنا مال چھوڑنا پڑے تو اس کے نتیجے میں ہرس تو نہیں پیدا ہوتی, لیکن جب روپے کے بدلے میں روپے کی ہرس پیدا ہو جائے تو اس سوسائٹی میں اسلامی نظام پھر نہیں چل سکتا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باریک فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو احمدی تجار مجبور ہیں دنیا کے مالی نظام میں رہتے ہوئے سود دینے پر, ان کے لیے یہ ترکیب ہے کہ اگر ان کے روپے پر کچھ سود ملے تو اس کے مقابل پر حساب میں وضع کر دیا کریں, اور کوشش یہ کریں کہ سودی نظام سے نہ ان کو کچھ ملا اور نہ ان کو دینا پڑا. لیکن اگر نہیں تو دینے والے تو بے شک بن جائیں لیکن روپے پر ذاتی فائدہ نہیں اٹھانا, اور ایسا روپیہ اگر ان کو ملتا ہے مجبوراً, یعنی خواہش نہیں ہے نیت نہیں ہے, तो इस उनकी नीयत को पाक करने की खातिर कहा कि ये फिर खुदा के दीन पर खर्च करो, तुम पर खर्च ना, यानी सूदी निजाम के बरक्स नताइज पैदा करने के लिए खर्च करो, गरीब की हमदर्दी पर खर्च कर दो, क्योंकि सूद तो गरीब को लूटना चाहता है और ज्यादा गरीब करना चाहता है, गरीब कौमों को और ज्यादा बदतर हाल में मुबतला करना चाहता है, इसलिए बिल्कुल बरक्स नताइज पैदा कर दो तो इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये थी हिकमत हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम के फैसले की। मगर आजकल मैं देख रहा हूं और बहुत सी मिसालें मेरे सामने आ रही हैं कि बजाय इसके कि अहमदी कुल्लियतन सूदी रुपए की हिर्स से आजाद होकर मजबूर कर दिए जाते इस बात पर कि वो तिजारत की नई नई राहें तलाश करें और दयानतदारी उनके अंदर पनपे और दयानतदार और साहिब सलाहियत लोग उनकी तवज्जो का मरकज बने, उसके बरक्स कई बहानों से सूदी रुपए और सूदी हिर्स में मुबतला हो चुकी है जमात। जमात तो नहीं कह सकता मैं नाउदुल्ला मंजारे, क्योंकि भारी अक्सरियत पाक है अल्लाह के फजल से, लेकिन एक रौ चली हुई है जो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। उसको अगर परवरिश पाने दिया गया तो फिर ये जमात इस लायक नहीं रहेगी कि दुनिया के माली निजाम को तब्दील कर सके। वो रौ ये है कि अपने रुपए को बाज ताजरों को लोग देते हैं और कहते हैं कि हमें बताओ कितने फीसदी मुनाफा दोगे, 15%, 20%, 25%, और अपने दिल को ये मुतमईन कर लेते हैं कि हमने तो सूद नहीं खाया, हमने तो मुनाफा लिया। सवाल ये है कि किसको धोखा दे रहे हो? खुदा को धोखा दे रहे हो? यानी शरायत सूदी हैं और नाम तिजारत रख दिया। जब तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाता है तो तुम्हें दुख नहीं पहुंचता? क्या भूल जाते हो इस बात को कि एक मुसलमान का गैर मुस्लिम नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा करता, सिर्फ मुआशरे में दुख पैदा हो जाता। नाम बदलने से किस तरह हकीकत बदल जाया करती? किसी दरख्त को कुत्ता कह दें तो वो दरख्त भौंकना तो नहीं शुरू कर देगा, मछली का नाम सुअर रख दें तो वो हराम तो नहीं हो जाएगी, और उसी तरह सुअर का नाम कोई बहुत सी अच्छा तजवीज कर दें, उसे घर का पला हुआ मुर्गा कहना शुरू कर दें तो गोश्त तो हराम का हराम रहेगा, उसके अंदर तो एक जर्रा भी तब्दीली पैदा नहीं होगी। तो कुरान करीम इस किस्म की जहालत की तवक्को नहीं रखता आपसे कि अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करें और अपने जमीर को धोखा देने की कोशिश करें कि सूद का नाम बदल दें और कहें कि यह तिजारत हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाक हो गया। हराम लाजमन हराम रहेगा और सूद बहरहाल सूद रहेगा, शर्तें हैं जो फैसला करेंगी कि यह सूदी तिजारत है या गैर सूदी तिजारत है। चुनाचे रब्बा में भी मेरे इल्म में ये बातें आई हैं कि बहुत से लोग खुद धोखा देते हैं लोगों तक पहुंचकर और उनसे कहते हैं कि देखो हम तुम्हें 25% दे देंगे और तुम हमें सरमाया दे दो, हम तुम्हें मुनाफा देंगे, और धोखा दे रहे होते हैं वो लोग अपने नफ्सों को भी और खुदा को भी। लेकिन कुरान करीम फरमाता है मा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, हकीकत यह है कि सिर्फ वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं, ना वो खुदा को धोखा दे सकते हैं ना वो उसकी जमात को धोखा दे सकते हैं। इसलिए आज के बाद कुल्लियतन इसको खत्म हो जाना चाहिए, इस निजाम को, ये इस्लाम के निजाम से मजाक खेला जा रहा है और जमात को तबाह किया जा रहा है और दुनिया की तबाही के सामान किए जा रहे हैं। जिस जमात ने दुनिया का माली निजाम बदलना था, अगर वो खुद हलाकतों का शिकार हो जाए तो वो किस तरह तब्दील कर सकती? चुकुफरस काबा पर खीजत हुजा मानद मुसलमानी, अगर जमात अहमदिया पर ही सूदी निजाम वार कर गया और इस पे उसके कब्जे में जमात चली गई तो किस तरह सार उठाकर ये दुनिया को दुनिया में ऐलान करेगी कि हम तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए आए, हमसे वाबस्ता है तुम्हारे हया? वो कहेंगे तुम तो आप हलाक हो चुके हो, तुम तो खुद सूद का शिकार हो बैठे हो, फिर किस तरह दुनिया को तब्दील करोगे? बस वो लोग जो इस किस्म का रुपया दे चुके हैं उनसे मैं कहता हूं कि एक आना भी उन पर हराम है अगर वो उस रुपए पर मुनाफे के नाम पर वापस लें। और वो लोग जो इस किस्म की तिजारतें कर रहे हैं, धोखा देते हैं, उनको भी मैं मना करता हूं कि आलमी माली निजाम की मजबूरी के नतीजे में बैंकों की मार्फत जो गंदगी मौजूद है पहले से और हम मजबूर हैं किसी हद तक उसमें मुलव्वस होने में, वो काम आप बेशक करें लेकिन तकवा के साथ, डरते डरते, खुदा का खौफ खाते हुए और ये कोशिश करते हुए कि हत्तल मकदूर सूद से बचें। लेकिन जमात को गंदा ना करें। अगर वो एहमदियों के पास जाएंगे और उनको खराब करेंगे और ज्यादा लालच देंगे पैसे की, तो खा वो दयानतदारी से ऐसा करें, तभी वो जमात के लोगों को गंदा कर रहे होंगे। ऐसे लोगों के मुतल्लिक कुरान करीम का ये ऐलान है, फ़ैलम तफ़लू फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। एक और रंग में जमात को एक चैलेंज है, फरमाता है तुम फिर अल्लाह से टक्कर लोगे तो खुदा तुम्हें सजाएं देगा, तुम्हारे रुपयों में बरकत नहीं रहेगी, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएंगी। यहां जंग से मुराद एक मोमिन अगर ऐसी हरकतें करता है तो उस माने और हो जाते हैं, जंग के माने बदल जाएंगे। मुराद ये है कि फिर बहुत अच्छा, फिर तुम खुदा से टक्कर लेते हो तो खुदा की तरफ से अकूबत के लिए तैयार हो जाओ। तुम किस तरह समझ सकते हो कि जबरदस्ती अमीर हो जाओगे और जबरदस्ती खुदा के निजाम को नजरअंदाज करके तुम्हारी दौलतें तुम्हें खुशियां पहुंचा सकेंगे। फाजनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही का मतलब यह है कि बहुत अच्छा, फिर टक्कर लो और खुदा तुम्हें सजा देगा और तुम्हारे रुपयों की बरकतें छीन लेगा और तुम्हारी घरों की खुशियां नोची जाएंगी, तुम्हारी औलादों की बरकतें उठ जाएंगी। और जबरदस्ती तुम खुदा से कुछ भी नहीं ले सकते। वैन तुक तुम, लेकिन साथ अल्लाह बड़ा रऊफ रहीम है, फरमाता है जो हो चुका हो चुका, हम तुम्हें तौबा की तरफ बुलाते हैं। सूद देने वालों को कहता है फैन तुब तुम फलकुम रऊस अमवालेकुम, वैन तुब तुम फलकुम रऊस अमवालेकुम, तौबा करो तो हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा रुपया अब वापस नहीं आएगा, वो रुपया के अब तुम हकदार नहीं रहे, तुम पहले सूद खा बैठे हो, कई किस्म के फायदे उठा चुके हो, इसलिए वो रुपया तुम्हारा नहीं रहा। फरमाते हैं हम ये सजा तुम्हें नहीं देते, ये माफी दे देते। आज के बाद जो तुम्हारा असल जर है वो तुम वापस लेने का हक रखते। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, जब तुम तौबा कर बैठे हो तो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा ना तुम जुल्म करने वाले बनो। इसके बाद खुदा ताला फरमाता है कि अब ये रुपया फौरी तौर पर तो वापस हो नहीं सकेगा, फिर क्या इंतजाम चलना चाहिए? फरमाया तुम्हें मोहलत देनी पड़ेगी। जिनके पास तिजारत पर रुपया लगाया हुआ था उन पर तुम ये एहसान करो कि वो तुम्हें सूद देना बंद कर दें, और ये एहसान करो कि कुछ मोहलत दो उनको कि जिसमें वो रुपया वापस करें, और वो कामिल दयानतदारी और तक्वा के साथ जल्द अज जल्द इन लोगों का सरमाया वापस करने की कोशिश करें, और अगर वापस नहीं करते या नहीं कर सकते तो समझौता करें। तिजारती अगराज से अगर रुपया वो लगाना चाहते हैं तो उसका रास्ता तो खुला है, फिर वो नया समझौता करें इस्लामी शरीयत के मुताबिक और नफा नुकसान में बराबर के शरीक हों तो फिर इस रुपए को का इस्तेमाल जायज हो जाएगा। तो यही वो दो तरीक हैं जो खुले हुए हैं। बाकी इस निज़ाम की नश्को नुमा के सिलसिले में क्या ज़राए अख्तियार करने चाहिए उसके मुतल्लिक बाज़ जमात की तरफ से कमेटियाँ बिठाई गई हैं, और मैं एक सलाह आम भी देता हूँ सारी जमात को। इस मुख्तसर मजमून की रोशनी में जमात के अहले फिक्र जो तजारती मलिका रखते हैं और शुद्ध बुद्ध हैं उनको इन बातों की, उनको चाहिए कि वो जमात को मशवरा दें कि जब सूद पर रुपया नहीं लगाना और सूद पर हत्तल मकदूर रुपया नहीं लेना तो फिर अहमदी अहबाब के लिए तजारत के कौन से बाकी रस्ते रह जाते हैं, और किस तरह जमात अंदरूनी तौर पर ऐसा निज़ाम जारी करे कि बाहर के लोगों से बेहतर तौर पर वो दुनिया में नशो नुमा करके दिखाए दुनिया को और बताए कि इस्लाम का निज़ाम यानी खुदा ताला की रहमत के हिस्से को छोड़कर भी दुनिया के कानून के लिहाज से भी पनपने की बेहतर हैसियत रखता है। इस पर अहले इल्म भी गौर करें और अहले तजर्बा भी गौर करें, और जहाँ तक मुमकिन हो अपनी तजावीज़ पूरे गौर और फिक्र के साथ मुझे भिजवाएँ ताकि वो कमेटियाँ जो इन बातों पर गौर कर रही हैं उनको वो इरसाल कर दी जाएँ, वो उनके ज़ेर नज़र आ जाएँ। अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाए, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक बख्शे। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि खुदा की राह में जो आप खर्च करते हैं वो तो एक ऐसा सौदा है उसमें आपको फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो खुदा इस तरह घर बरकतों से भरता रहा है और भर रहा है और भरेगा, और जो लोग अल्लाह के निज़ाम से मोहब्बत करते हैं वो उन लोगों से भी मोहब्बत करते हैं जो खुदा के निज़ाम के लिए अब कुर्बानियाँ पेश करते हैं। और उन दिलों से खुद ब खुद ऐसे प्यार से दुआएं उठती हैं कि नामुमकिन है कि वो ना मकबूल हो जाएं। इसलिए अहबाब जमात में एक बड़ी कसरत है ऐसे लोगों की जो खुदा की राह में कुर्बानी करने वालों के लिए दिन रात दुआएं करते रहते हैं, और जब वो अलफजल में पढ़ते हैं कोई वाकया कुर्बानी का जमाती या इनफरादी, तो बेख्तियार वो खुदा के हजूर झुकते हैं और उन लोगों के लिए दुआएं शुरू कर देते हैं। तो एक और जायद फजल का निज़ाम है, दुआ का निज़ाम, ये भी उनकी मदद कर रहा है। इसलिए उनके लिए तो किसी किस्म का खौफ का कोई सवाल नहीं। जो रुपया बच जाएगा उसमें अगर वो सूद पर नहीं लगाएंगे तो अल्लाह ताला की बरकत का निज़ाम यहाँ भी एक आएगा जो आम दुनियावी निज़ाम से बाला है। लेकिन इन सब को भी छोड़ दें आप, तब भी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामी निज़ाम दुनिया के कानून के मुताबिक भी ज़्यादा पनपने की सलाहियत रखता है और लाजमन ये गालिब आ सकता है। जमात तवक्कुल के साथ, तकवा के साथ इस पर अमल तो करके देखे, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक बता दे।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله